آج صرف 15 منٹ ہیں وارتالاپ کے، ہاں جی.
اور باپ نے بھی آتم یگ رکھا ہے اور منشیہ بھی یگ رکھتے ہیں،
منشیہ کی رکھتے ہیں میٹیریل، وہ استھول میٹیریل سواہا کرتے ہیں. اور باپ بچوں سے میٹیریل یگ نہیں کرواتے، سنکلپوں کو سواہا کرو، وکاروں کو سواہا کرو، اپنی کمیوں کو سواہا کرو، اوگنوں کو سواہا کرو، دیہ ابھیمان کو سواہا کرو. بہت بڑا انتر ہو گیا، 2500 سال ہو گئے یگی کرتے کرتے، میٹیریل سواہا کرتے کرتے. دنیا میں فرق پڑا یا دنیا نیچے گرتی گئی؟ کیا ہوا؟ دنیا نیچے گرتی گئی. تو سنکلپ بیج ہے، اس بیج کا اگر پرسکار کر لیا تو سب ٹھیک ہو جائے گا. اس لیے کہتے ہیں برہما نے سنکلپوں سے سرشتی رچی، تو کیا دشٹ سنکلپوں سے سرشتی رچی یا شریمت کے انکول سنکلپوں سے سرشتی رچی؟ شریمت کے انکول جو سنکلپ کیے گئے ان سے نئی سرشتی رچی گئی.
باہر جو ایونس اور سپرٹس چھوڑتے ہیں تو کیا وہ بھی برہما دشا میں پرویش ہوتے ہیں؟
ایون سول شریر چھوڑتی ہیں
باہر کی دنیا
کہ شریر چھوڑنے کے بعد وہ ایون بن جاتے ہیں. سوکھم شریر داری دوسروں میں پرویش کر کے تنگ کرتے ہیں.
ہاں تو
دیوتا دھرم کی آتمائیں ہی اور دھرموں میں ہندو بن کر کے کم کنورٹ ہوتی رہی. ان میں دو پرکار کی آتمائیں، ایک وہ ہے جو ٹوٹل آدھین ہو گئی بھی دھرمیوں کی، اور ایک وہ ہے جو صرف پربھاوت تو ہوئی تھوڑا لیکن ان کے آدھین نہیں ہوئی. جیسے سوریہ چندرونشی آتمائیں ہیں جو اپنے دھرم کی پکی ہے، وہ اپنے دھرم پر پکی رہی انت تک نمبر وار پرسارتھ انوسار. کنورٹ نہیں ہو پائی، ان کی سنکھیا بہت تھوڑی. جیسے جھاڑ میں تنا دکھایا گیا ہے نیچے سے لے کر اوپر تک ایک سیدھ میں ہے، اور کچھ دوسری ڈالیاں ہیں جو دائیں اور مڑ گئی، کچھ بائیں اور مڑ گئی. ودیشی دھرموں میں کنورٹ ہو گئی، کیونکہ دواپر سے آنے والے دویت وادی دھرم پتائیں ہیں جنہوں نے شریمت کے برخلاف اپنی مت مکس کر کے نئے نئے دھرم استھاپن کیے. ان کے پربھاؤ میں آنے والے سب بھوت پریت بن جاتے ہیں، سب سوکھم شریداری بنتے ہیں، کیونکہ کرم اکرم وکرم کی صحیح گتی سمجھانے والا پرم پتا پرماتما کے سوائے اور کوئی دھرم پتا نہیں ہے. اس لیے وہ آتمائیں انیک جنم पाप कर्म करने वाली है। पापों का बोझा बहुत बढ़ जाता है तो उनको अपना शरीर नहीं मिलता और दूसरों के शरीर में प्रवेश करके पाप करती कराती रहती है। आई बात समझ में क्या है? हाँ जी
बाबा, ब्रह्मा ने जो तीन बार सृष्टि रची और बिगाड़ दी वो सृष्टि सात्विक संकल्पों से रची गई थी।
ऐसे तो दुनिया में कोई भी चीज हो, कोई भी चैतन्य हो, जड़ हो, जंगम हो, चार अवस्थाओं से पसार होने के बाद उसका रूप बदलता ही है। सृष्टि भी चार अवस्थाओं से पसार होती है, उसके बाद फिर पुराने से नई बन जाती है। ब्रह्मा के लिए भी यही बात लागू होती है कि उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया तो सारी सृष्टि की जो भी आत्माएं हैं वो चार वर्गों में बांटी हुई है। ब्राह्मण सो देवता एक वर्ग, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, फिर परिवर्तन होता है तो ब्राह्मण सो देवता बन जाते हैं। तो जो आखिरी वर्ग है ब्राह्मण सो देवता बनने का वो तो चौथा आयाम है सफलता प्राप्त करने का। बाकी जो तीन आयाम गए देवता वर्ण की शूटिंग, क्षत्रिय वर्ण की शूटिंग और वैश्य वर्ण की शूटिंग, इनमें अति नहीं हुई इसलिए अंत नहीं हुआ, इसलिए गाया हुआ है ब्रह्मा के द्वारा तीन बार सृष्टि रची गई। तो संकल्पी सृष्टि है, चौथी बार में अति हो जाती है और अंत तो हो जाता है, नई सृष्टि आगमन हो जाती है।
तो बिगाड़ने का कारण क्या हुआ? संकल्प
अति हुई नहीं तो अंत हुआ ही नहीं। कोई चीज पकने के लिए जैसे सोना है, सोना जब तक पूरी तीव्र अग्नि में नहीं डाला जाएगा तब तक उसका रूप परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे ही तीन बार जो शूटिंग होती है सृष्टि प्रक्रिया की वो परिपूर्ण स्टेज में नहीं हो पाती। और ये भी बात है, कोई काम किया जाता है असफलता मिलती है तो अनुभव हो जाता है, एक बार की अनुभव, दूसरी बार भी अनुभव, तीसरी बार भी अनुभव, अनुभव ये कहता है कि सृष्टि पसंद नहीं आई तो बिगाड़ते गए। जब तक आती न हो तब तक अंत तो होता ही नहीं।
मोर का जो मिसाल दिया है कि वो तीन बार उड़ान भरता है वो क्या ब्रह्मा के साथ कैसे होता है या किसके
द्वारा? एक प्रश्न आया कि मोर तीन बार उड़ान भरता है, ये मिसाल किसका है? मोर पंख पवित्रता का सूचक माना जाता है, वो मोर पंख देह अभिमानी की पूंछ है तो देखने में भी बड़ी सुंदर लगती है और सब पूंछ से डांस भी बहुत सुंदर करता है, लेकिन उड़ते समय ऊंची उड़ान करते समय वो पूंछ भारी पड़ जाती है। तो ज्यादा से ज्यादा वो 3 बार उड़ान भरता है। इसके बाद उड़ान नहीं भरता है। शूटिंग से कनेक्टेड बात है। सत्य की शूटिंग में तो संगम युगी कृष्ण की उड़ान भरने की बात ही नहीं, क्योंकि पढ़ाई पूरी नहीं होती है। बाकी सत्यु की शूटिंग जब पूरी हो जाती है तो बेसिक नॉलेज की पढ़ाई ही पूरी हो जाती है। जो बोला है आत्मा की सारी कट उतरने पर तुम डायरेक्ट बाप से सीखते हो, तो वहां से पढ़ाई शुरू होती है, उड़ान शुरू होती है। तो 3 युगों में 3 प्रकार की उड़ाने हैं, त्रेता युगी शूटिंग, द्वापर युगी शूटिंग, कलयुगी शूटिंग। और 3 बार उड़ान भरने के बाद मयूर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, बार बार उसे उड़ान भरने की दरकार भी नहीं है। ये संगम की कृष्ण की बात है या सत्युग में पैदा होने वाले कृष्ण की बात है? संगम की कृष्ण की बात है।
हर धर्म की राजा की स्थापना करने के लिए प्रजापिता को जाना पड़ता है। तो प्रजापिता तो ढेर सूर्यवंशी है, वो तो जाता नहीं है। तो फिर
हर धर्म की सूर्यवंशी जो आत्मा हर धर्म की नहीं होती है, लेकिन हर धर्म में सत्व प्रधानता की स्टेज होती है, और वो सत्व प्रधानता की स्टेज जितनी सूर्यवंश में होती है उतनी और किसी धर्म में नहीं होती।
तो बाबा ये प्रजापिता तो दूसरे दूसरे धर्मों में जाता नहीं,
और धर्मों में प्रजापिता नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? बाप के 10 बच्चे हैं और 10 बच्चों के अपने अलग अलग परिवार चल रहे हैं, तो बाप बच्चों के घर नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? वो तो बीज है, वो हर धर्म में कन्वर्ट होता जाता है, परिवर्तित होता जाता है। जहाँ जहाँ जाता है वहाँ राजा ही स्थापन करने जाता है, ऐसे नहीं कन्वर्ट होने जाता है।
तो बाबा ने तो कहा बाबा ये तो थोड़ी की आत्मा है,
थोड़ी की आत्मा है तो अपने धर्म में पक्की रहती है, सिर्फ और धर्म वालों को राजा ही देने के निमित्त है।
बाबा ने मुझे कहा स्थापना करेगा जो पालना करेगा उसको ही विनाश करना पड़ेगा।
करता है ना, जैसे इस्लाम धर्म है इब्राहिम का, और भारतवर्ष में उसकी राजाई चली मुगल संतनत, तो मुगल संतनत के रूप में वो बाबर के रूप में स्थापना भी करता है, शाहजहां के रूप में पालना भी करता है, और रंगीला रंग शाह के रूप में खलास भी कर देता है।
तो बाबा ये प्रजापिता की पर्सनालिटी रामबाब की पर्सनालिटी है,
और किसकी पर्सनालिटी होगी जो आज मध्यंत पाठ बजाता है? बाप और बाप का बच्चा आज में भी नारायण 16 कला संपूर्ण नारायण की मंदिरों में पूजा होती है, मध्य में भी राजा विक्रमादित्य सोमनाथ मंदिर की स्थापना करता है, गाइडेंस देने वाला वही बाप है रामबाप, और अंत में भी सृष्टि का परिवर्तन करने के लिए 2 ही आत्माएं निमित्त बनती हैं।
तो बाबा ऐसे तो फिर
क्या हुआ?
हर धर्म में मतलब 3 पाठ बजा तो 8 या 24 25 तो यही हो गए,
8 या 24 30 25 हो गए। 8 धर्म में राजा ही चलती भी कहाँ है?
8 धर्म में तो चलती है
राजा ही, तो सिर्फ 7 में ही चलती है। जो आर्य समाज है वो तो कोई धर्म ही नहीं है, मठपंत है। हाँ जी, कर्म से अतीत चले जाओ, कर्म करते रहो लेकिन उसका कोई फल न बने। माना मन बुद्धि कर्म में न लगी रहे। जैसे महबूबा को महबूब याद करता है, कारखाने में काम करता रहता है, रास्ते में जाता है, आंखें खुली हुई होती है, महबूबा याद आती रहती है, दूसरे लोग सामने से निकल जाते हैं, उसे पूछा जाए कौन कौन निकल गए, उसे याद ही नहीं रहता। आंखें भी इंद्रियां हैं, आंखों ने खुले होते हुए भी क्यों नहीं देखा, क्या कारण हुआ है? मन की स्थिति दूसरी जगह लगी हुई थी। इसलिए कहते हैं मन जीते जगत जीत। मन को कंट्रोल कर लिया तो सारी दुनिया को कंट्रोल कर लिया। मन 10 इंद्रियों का राजा है, 10 इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला है। मन आसक्त हो जाता है तो इंद्रियां भी आसक्त हो जाती है। कर्मातीत अवस्था को पाना है तो मन को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस यहां कराई जाती है, जिसे कहते हैं राजयोग। ये राज है, सन्यासियों के लिए ये राज नहीं है, उनकी तो जन्म जन्मांतर की आदत पड़ी हुई है कर्मयोग को छोड़ने की। लेकिन कर्मयोग का मतलब ये नहीं है चोरी चकारी करो, डकैती करो।
ब्रह्मा ने कितने जन्म लिए?
हैं?
ब्रह्मा ने
84 जन्म। ये पूछने की बात है, एडवांस लिया, एडवांस तक आ गए और बेसिक की प्रश्न पूछ रहे। ब्रह्मा ने कितने जन्म लिए?
12।
हाँ
नंबर
दें आपको।
हम अकेले पड़ जाते, हम कौन मैसेज दे दें?
अकेले तो और अच्छे,
तो अच्छे तुम आ जाओ।
अकेला जो है वो ज्यादा पुरुषार्थ करेगा या ढेर लोगों के बीच में रहने वाला ज्यादा पुरुषार्थ करेगा? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई।
अब तुम आ गए, अब हमें कोई कहन मारो नहीं, कोई सुन मारो नहीं।
तो क्या कहने की जरूरत?
बाबा आ गए।
बात ठीक है,
ठीक है,
आ गए
तो हम कहाँ मिले? तुम
आ गए ना, मिल गए।
दूर है तो पांडव मैसेज दे देते हमको।
पूरी भरी हुई सभा में अपनी बातें नहीं करना चाहिए, ये स्वार्थ की बात हो गई। और ज्ञान की बातें पूछो। कौन चल रही
क्लास में? माता मुन
कहाँ
क्लास में? मंडे में चल रही है, मंडे में क्लास चल रही है।
हाँ
वो बोलते हैं भाई बाबा चल रही है।
भट्टी नहीं की है? तो इसमें दूसरे का क्या दोष?
तो वे हमसे किया कि आप बाबा से मिलाओ,
तो तुम उनसे कहो कि पहले भट्टी करो जाएगी।
एक माता से बिल्कुल चले ही नहीं जा।
हाँ हाँ नहीं चला जाता है तो ठेला में धर लो। हाँ हाँ तुम उनसे कहो कि वोट के पैसे खर्च करा हम तुम्हें, कहा बताओ कहाँ मिलाते जाके। हाँ जी
बाबा, जैसे बताया कृष्ण का जब जन्म हुआ तो छुट्टी का ही
है।
कृष्ण का जब जन्म हुआ मैंने 36 में तो छोटी इकाई होगी,
छोटी
छोटा परिवार होगा,
छोटा परिवार होगा। हाँ
अपनी आसमान हो,
अरे जो सृष्टि शुरू होगी नई दुनिया की वो संपन्न 100% नई सृष्टि होगी या 99.99% नई सृष्टि होगी? तो 100% नई सृष्टि में 100% संपन्न आत्माएं होनी चाहिए یا کوئی ادھوری آتما بھی ہونی چاہیے، ایک آدھ سزا کھانے والی آتما آ جائے تو نہیں چلے گا، چلے گا یا نہیں چلے گا؟
نہیں
چلے گا.
تو اس سمے کے 9 لاکھ 8 مہینے
9 لاکھ سزا سزائیں نہیں کھاتے ہیں،
کھائیں گے
تو 9 لاکھ کی بات کیوں کی؟ ایسی آتماؤں کا سنگٹھن چاہیے جو دھرمراج کا ایک بھی ڈنڈا کھانے والی نہ ہو. پوری سمپن آتما انہیں کہتے ہیں اشٹ دیو، اصل سوریہ ہنسی.
بابا جیسے بھکتی مارگ میں دکھایا نا کہ وہ بس دیو کرشن چھوٹے اسی میں رکھ لے جاتے ہیں، تو یعنی یمنا ان کو نکالنے نہیں دیتے، وہ پانی بھر جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بدھ روپی ٹوکری ہے، جس بدھ روپی ٹوکری میں کرشن کی آتما وراجمان کی جاتی ہے، رام والی آتما ہوئی بدھی. سوکشم بتن کے 3 طبقے ہیں، ان 3 طبقوں میں بدھی کہاں ہے؟ کون سے طبقے میں؟ 3rd طبقہ ہے بدھی. اور من کا طبقہ کون سا ہے؟
برہم.
اور سنسکار کا طبقہ؟ وشنو. تو بدھ روپی ٹوکری میں کرشن والی آتما بیٹھتی ہے.
یمنا
اور یمنا جو کوئی ندی ہے، کالی ندی، کالے کرم کرنے والی، مہا کالی کے روپ میں پاٹ بجانے والی، جس میں بڑے بڑے مگر مچھ رہتے ہیں، 7 نالوں کا گندا جل آ کر کے اس میں ملتا ہے دلی میں. وہ گند بہانے والی ندی وہ کلیوگ کے انت میں گند بہانے والی بنتی ہے، جس میں نالے اکٹھے ہوتے ہیں. اور وہی ندی کو بھگوان آ کر کیا بنا دیتا ہے؟ یمنا کا وہ کنٹھا بنا دیتا ہے جسے سورگ کہا جاتا ہے. تو یمنا مڑے ہم امڑے گی نہیں بھگوان کی طرف.
تو بدھ روپی پیر،
بدھ روپی ٹوکری
نہیں، پیر پیر چھوتی ہے، جب تک پیر نہیں چھونے.
بدھی کوئی پاؤں کہا جاتا ہے. اور
بابا جب کالی جیب نکالتی ہے تو شیو جی آ کے چرنوں
میں لوٹ جاتے ہیں. شیو جی تھوڑے ہی آ کے چرنوں میں لوٹ جاتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ مہاکالی سنگھار کرتی ہوئی آ رہی ہے اور اس نے سارا ہی سنگھار کر دیا. اب یہ رکنے والی نہیں ہے، اور کوئی سے رکنے والی نہیں ہے، تو خود آ کر کے لیٹ جاتے ہیں تاکہ اس کو پتا چلے کہ ہم نے کس کے سر کے کس کی چھاتی پر پاؤں رکھ دیا، ہم سے بڑا انرتھ ہو گیا. اور رک جائے، پشچاتاپ ہونے لگے، کوئی کہے کہ روکا کیوں نہیں؟ ان کو تو بھگوان کا روپ کہا جاتا ہے، تو روکا اس لیے نہیں، سامنا اس لیے نہیں کیا کہ شنکر جی کا خود کا ہی کام کیا ہے، سنگھار کرنا. اور سنگھار خود نہ کر کے جس کو اشارہ دیا اس نے اشارے کا پالن کر لیا، تو شکتیاں سنگھار کارنی بن گئی. تو شکتیاں اگر وہ کاری کرتی ہیں تو ان کا ویرودھ کرنے کی کیا درکار؟ کام کس کا کیا؟ کام تو ان کا ہی کیا، تو ویرودھ کرنے کی تو بات ہی نہیں. باقی روکنا بھی ہے، کیونکہ سستی کا بیجا روپن کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ سارا ہی لین نہیں ہو جانا چاہیے، سارا ہی سماپت ہو جائے سستی تو پھر بچے گا کوئی نہیں. کچھ آتمائیں رہیں اس سستی پر، اس لیے وہ وناش کے کاری کو روکنا ضروری تھا، تو روک دیا.
بابا
शंकर जी को जलहरी में रखें,
जलधारी को,
जलधारी
जलाधारी
शिवलिंग को जलाधारी में रखें।
माँ और बाप की निशानी दिखाई गई है। बाप बाप कैसे पता चले ये बाप है? जो चित्रकार होते हैं ना तो चित्र बनाते हैं, तो चित्रों में ऐसी बात दिखाते हैं जो देखने से ही पता चल जाए कि ये बाप है और ये अम्मा है। अगर नाक दिखा दें तो नाक तो अम्मा को भी होती है बाप को भी होती है, कान दिखा दें तो कान अम्मा को भी है बाप को भी है, आंख दिखा दें आंख अम्मा को भी है बाप को भी है, कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए क्या दिखाया? जलाधारी दिखाई, जल का आधार लिया हुआ है। ये ज्ञान जल का आधार लेने वाली शक्तियां ही होती हैं, वही ज्ञान को धारण करती है। बाकी पुरुष तो साफ दुर्योधन दुशासन है, वो ज्ञान धारण नहीं करते, अज्ञान धारण कर लेते हैं। इसलिए जलाधारी के रूप में किसको दिखाया है? स्त्री जाति को, माता को और पिता को, पिता के रूप में दिखाया है। ये दोनों मिलकर के जो शक्ति उत्पन्न करते हैं, उन शक्ति उत्पन्न करने वालों में सर्वोपरि जिन्होंने पार्ट बजाया उनका नाम शंकर पार्वती रख दिया। और शंकर में वो निराकारी लिंग रूप शिव प्रवेश करता है, जो शिव कल्याणकारी कहा जाता है। वो कल्याणकारी शिव का नाम सिर्फ शंकर के साथ जोड़ा जाता है और कोई के साथ नहीं जोड़ा जाता है। माना इस सृष्टि में जो कामेंद्रिय है उस कामेंद्रिय को भी जीतने का कार्य करने वाला वो शिव है। मनुष्य कामी होते हैं, देवताएं निष्कामी होते हैं। इंद्रियों से सुख भोगने की आस मनुष्यों की होती है, देवताओं को कोई ऐसी इच्छा नहीं होती है, लेकिन उन इच्छाओं के ऊपर वासनाओं के ऊपर विजय प्राप्त करना शिव आकर के सिखाते हैं। शिव ने आकर के इस सारी सृष्टि के मनुष्यों को इच्छा मात्र में विद्या बनाया। अब कोई एक जन्म के लिए बनते हैं, थोड़े समय के लिए बनते हैं और कोई जन्म जन्मांतर के लिए बनते हैं। देवात्माओं ने 21 जन्म के लिए प्राप्ति की। तो ये माता पिता का रूप है, वास्तव में एक है आत्माओं का पिता शिव, वो सदैव निराकार है, और एक है मनुष्यों का पिता जो इस षष्टि रूपी रंगमंच पर ऑलराउंड पार्ट बजाने वाला सदा साकार है। परंतु वो निराकार शिव जब तक साकार में मुकर रूप से प्रवेश न करे तब तक इस रहस्य को समझाए नहीं सकता। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना कैसे होता है और कौन ये राजयोग सिखा सकता है? एक परम पिता परमात्मा शिव के सिवाय और कोई भी संपूर्ण राजयोग नहीं सिखा सकता, सब नीचे गिराने वाले हैं, पद नीचा कराए देंगे। ऊंचा उठाने वाला एक ही शिव बाप है।
जगदम्बा का चांद
फिर उसको काली का है, फिर काली को भी चार भुजा दिखाते हैं।
चार भुजा, हजार सैकड़ों भुजाएं दिखाते हैं, उनकी भुजाओं की गिनती नहीं, जितनी ब्रह्मा की भुजाएं उससे ज्यादा भी महाकाली की भुजाएं। रुद्रमाला में जितने भी स्त्री चोले हैं, रुद्रमाला में जितने भी स्त्री चोले हैं, उनकी मुखिया कौन है? जगदम्बा। तो बाकी भुजाएं सब महाकाली की भुजाएं हो गई ना।
भक्ति मार्ग में जो चित्र सिर्फ चार दिखाते,
महाकाली को चार भुजाएं नहीं दिखाते, ढेर भुजाएं दिखाते हैं, टांगे सिर्फ दो दिखाते हैं।
बिल्ली को मिसाल
है,
बिल्ली बिल्ली को मिसाल क्या?
बिल्ली ने भी इतना प्यार दिखाया कि भले झूठे बेर खिलाए लेकिन प्यार से भरे हुए थे। तो भगवान तो प्यार के भूखे हैं। ये देखो, ये हमको मीठा मीठा खिलाती है, ऐसा न हो कोई कड़ुआ आट भगवान के पेट में जीभ में पहुंच जाए। भावना की बात है ना, भाव के भूखे हैं भगवान।
जनक की एक सेकंड में जीवन मुक्ति के।
बाबा हाँ जी,
ये बताया कि असुरों और देवताओं ने मंथन किया और असुरों और देवताओं की लड़ाई लगी, असुर तो होते ही नहीं कलयुग में और देवताएं होते ही कलयुग में, कैसे संबंध?
संगम युग में ही कोई आसुरी आत्माएं हैं, इशारे से नहीं समझती हैं, और कोई देव आत्माएं हैं जो इशारे से समझती हैं। सब मनुष्य ही इस दुनिया में संगम में, लेकिन दो प्रकार के हैं। एक सतयुग के पहले जन्म में देवताएं बनने वाले हैं, और दूसरे वो हैं जो सतयुग के आदि जन्म में नहीं पहुंचेंगे, 84 जन्म नहीं लेंगे, वो कम जन्म लेने वाले बनेंगे, परिपूर्ण आत्मा नहीं बनेंगे, खंडित आत्मा बनेंगे, और खंडित आत्मा होने के कारण द्वापर युग से दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो दो प्रकार की आत्माएं हो गई, एक शुद्ध देवात्मा और दूसरी कन्वर्ट होने वाली दानवात्मा, दैत्य आत्मा। तो दोनों में ये युद्ध दिखाया गया है।
बाबा नवरात्रि में बांधक पर जल चढ़ा भी जाती है।
क्या बोला
बाबा? बहुत पक्षी हैं और बहुत खिलाफ कर रहे हैं और बहुत खड़ा है यहाँ
भी नहीं दिखता, पैरों से भी चला जाता है। बाबा कहीं भी जाती है, मुरली साथ लेके जाती है।
चलो टाइम
रिसेंट अभ्यतवाणी सुननी है मुरली? पांच मार्च 2008 की अभ्यर्थना। हेडिंग दिया है संगम की बैंक में साइलेंस की शक्ति और श्रेष्ठ कर्म जमा करो। शिव मंत्र से मैंपन का परिवर्तन करो। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के स्नेह को देख रहे हैं। आप सभी भी स्नेह के विमान में यहाँ पहुँच गए हो। ये स्नेह का विमान बहुत सहज स्नेह के पास पहुँचाई देता है। स्नेह बहुत नजदीक आ जाता है। बाप दादा देख रहे हैं कि आज विशेष सभी लवली नात्मे परमात्मा प्यार के झूले में झूल रही, बाप दादा भी चारों ओर के बच्चों के स्नेह में समाये हुए हैं। ये परमात्मा से है, बाप समाना शरीर ही सहज बनाई देता है। व्यक्त भाव से परे अव्यक्त स्थिति में, अव्यक्त स्वरूप में स्थित कर देता है। बाप दादा भी हर बच्चे को समान स्थिति में देख करके हर्षित हो रहे। आज के दिन सभी बच्चे शिवरात्रि, शिव जयंती, बाप और अपना जन्मदिन मनाने आए। बाप दादा भी अपने अपने वतन से आप सभी बच्चों का जन्मदिन मनाने पहुंच गए हैं। सारे कल्प में ये जन्मदिन बाप का, बाप का न्यारा और अति प्यारा है। सारे कल्प में कोई का भी बर्थडे परमात्मा नहीं मनाते, आत्मा आत्मा का मनाते हैं। लेकिन ये अलौकिक जन्म परमात्मा आप आत्माओं का मनाते हैं। साथ में इस जन्म की विशेषता और भी है अलौकिक, जो सारे कल्प में नहीं हो सकती। ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि बाप और बच्चों का एक ही दिन बर्थडे होता हो। तो इस जन्मदिन का ये भी महत्व है कि बाप और बच्चों का एक ही दिन जन्मदिन आप सभी बाप के साथ मनाए रहे हो। जन्मदिन को शिव जयंती भी कहते हैं और शिवरात्रि भी कहते हैं। तो जन्म के साथ कर्तव्य का भी यादगार है। अंधकार मिटने का और प्रकाश फैलने का यादगार है। तो ऐसे अलौकिक जन्मदिन आप बाप दादा के साथ मनाने वाले भाग्यवान आत्मा हैं। बाप बच्चों को पदम पदम गुणा इस दिव्य जन्म मनाने की बधाइयां भी दे रहे हैं, दुआएं भी दे रहे हैं और दिल का याद प्यार दे रहे हैं। मुबारक हो, पदम गुना मुबारक हो। भक्त लोग भी इस उत्सव को बड़ी भावना और प्यार से मनाते हैं। आपने जो इस दिव्य जन्म में श्रेष्ठ अलौकिक कर्म किया है और अभी भी कर रहे हो, वो यादगार रूप में चाहे अल्पकाल के लिए, अल्प समय के लिए मनाते हैं, लेकिन भक्तों की भी कमाल है। यादगार मनाने वालों, यादगार बनाने वालों को भी देखो कितनी कमाल है। जो कापी करने में वो शायद तो निकले हैं, लेकिन आपके ही तो भक्त है ना। तो आपकी श्रेष्ठता का फल उन्हें यादगार बनाने वालों को वरदान रूप में मिल जाता है। आप एक जन्म के लिए एक बार व्रत लेते हो, संपूर्ण पवित्रता का व्रत लेते हो ना। काफी तो की है, एक दिन के लिए पवित्रता का व्रत भी रखते हैं। और आपका पूरा जन्म पवित्र अन्न का व्रत है और वो एक दिन रखते हैं। तो बाप दादा आज अमृत वेले देख रहे थे कि आप सबके भक्त भी कम नहीं है, उनों की भी विशेषता अच्छी रही है। तो आप सभी ने पूरे जन्म के लिए पक्का व्रत रखा है, चाहे खान पान का, चाहे मन के संकल्पों की पवित्रता का, चाहे शुद्ध वचन का, कर्म का, संबंध संपर्क में आते हुए कर्म, पूरे जन्म के लिए पक्का व्रत लिया। तो पक्का पक्का व्रत लिया है या थोड़ा थोड़ा लिया है? पवित्रता ब्राह्मण जीवन का आधार है, पूज्य बनने का आधार है, श्रेष्ठ प्राप्ति का आधार है। तो जो भी भाग्यवान आत्माएं यहाँ पहुंच गई हैं, वो अपन को चेक करो। ये जन्म का उत्सव पवित्र बनाने का चारों प्रकार से, सिर्फ ब्रह्मचर्य की पवित्रता का नहीं, लेकिन मन वचन कर्म संबंध और संपर्क में भी पवित्रता हो। ये पक्का व्रत लिया है जिन्होंने पक्का पक्का लिया है, थोड़ा भी कच्चा नहीं, वो हाथ उठाओ। कितना पक्का लिया है, कोई हिलावे तो हिलेंगे तो नहीं, नहीं हिलेंगे। कभी कभी तो माया आती है ना, कि माया को विदाई दे दी है, या कभी कभी छुट्टी दे देते हो, आ जाती है। अपन को चेक करो, पक्का व्रत लिया है, सदा का व्रत लिया है या कभी कभी का, कभी थोड़ा कभी बहुत, कभी पक्का कभी कच्चा, ऐसे तो नहीं है ना। तो बाप दादा से प्यार में सभी 100% से भी ज्यादा अपन को मानते हैं। अगर बाप दादा पूछते हैं कि बाप के प्यार में आपका परसेंटेज कितना है, तो सब बहुत उमंग उत्साह से हाथ उठाते हैं। प्यार में परसेंटेज भले कम ही होती है और मेजॉरिटी की है, 5/3/2008 की वाणी का दूसरा पेज। तो जैसे प्यार में पास हो, बाप दादा भी मानते हैं कि मेजॉरिटी प्यार में पास है, लेकिन पवित्रता के व्रत में चारों रूप में मनसा वाचा कर्मणा संबंध और संपर्क, चारों ही रूप से संपूर्ण पवित्रता का व्रत निभाने में परसेंटेज आ जाती है। तभी बाप दादा क्या चाहते हैं, बाप दादा यही चाहते हैं कि जो भी प्रतिज्ञा की है समान बनने की, तो हरेक बच्चे की सूरत में बाप की मूरत दिखाई दे, हरेक बोल में बाप समान बोलो, बाप दादा के बोल वरदान रूप बन जाते हैं। तो आप सब ये चेक करो, हमारी सूरत में बाप की मूरत दिखाई देती है, और बाप की मूरत क्या है, संपन्न, सब बातों में संपन्न। ऐसे हरेक बच्चे के नयन, हरेक बच्चे का मुखड़ा बाप समान है, सदा मुखड़ा मुस्कराता हुआ चेहरा दिखाई दे, कभी सोच वाला, कभी व्यर्थ संकल्पों की छाया वाला, कभी उदास, कभी मेहनत वाला, ऐसा चेहरा तो नहीं दिखाई देता है, सदा गुलाब। अभी गुलाब जैसा खिला हुआ चेहरा कभी और किसी प्रकार का न बन जाए, क्योंकि बाप दादा ने ये भी देखा है और जन्म से बता दिया है कि माया आपके सृष्टि जीवन का सामना करेगी, लेकिन माया का काम है सामना करना और आना। आप सदा पवित्रता के व्रत लेने वाली आत्माओं का काम है दूर से ही माया को भगाना। बाप दादा ने देखा है कई बच्चे माया को दूर से भगाते नहीं हैं, माया आती है तो आ जाने देते हैं, अर्थात माया के प्रभाव में आ जाते हैं। अगर दूर से ही नहीं भगाते हैं तो माया के भी आने की आदत पड़ जाती है, बार बार कोई न रूप में कोई न कोई रूप में आती है और वो जान जाती है कि यहाँ ये हमको बैठने देंगे, बैठने की निशानी है, माया आ जाती है। सोचते हैं कि ये माया है, लेकिन फिर भी क्या सोचते हैं, अभी हम कोई संपूर्ण थोड़े ही बने हैं, हम क्या कोई नहीं संपूर्ण बने हैं, अभी तो सभी बन रहे हैं, हम भी बन जाएंगे, तो गैंग गैंग करने लग जाते हैं। तो माया को बैठने की आदत पड़ जाती है। तो आज जन्मदिन तो मना रहे हैं, बाप भी दुआएं मुबारक दे रहे हैं, लेकिन बाप हर एक बच्चे को, लास्ट नंबर वाले बच्चे को भी किस रूप में देखना चाहते हैं? क्योंकि लास्ट नंबर भी बाप का प्यारा तो है ना, भले 8 की माला हो, 108 की माला हो, फर्स्ट मणका और लास्ट मणका दोनों बाप के समीप है तो प्यारे तो है ना। तो बाप लास्ट नंबर वाले बच्चे को भी सदा गुलाब देखना चाहते हैं, खिला हुआ, मुरझाया हुआ नहीं। मुरझाने का कारण है थोड़ा सा अलबेलापन आ जाता है, सोचते हो जाएगा, देख लेंगे, कर लेंगे, पहुंच ही जावेंगे, ये गैंग गैंग की भाषा नीचे गिरा देती है। तो चेक करो अभी कितना समय बीत गया, अभी समीपता का समय का और अचानक होने का इशारा तो बाप दादा ने दे दिया है, दे रहा है ऐसे नहीं, दे दिया है। ऐसे समय के लिए एवर रेडी अलर्ट होने की आवश्यकता है। अलर्ट रहने के लिए चेक करो हमारा मन और बुद्धि सदा क्लीन और क्लियर है। बुद्धि क्लीन भी चाहिए, क्लियर भी हो, इसके लिए समय पर विजय प्राप्त करने के लिए मन में बुद्धि में कैचिंग पावर और टचिंग पावर दोनों बहुत आवश्यक है। ऐसे सर्व का सरकमस्टांसेस आने हैं जो कहां दूर भी बैठे हो लेकिन क्लीन और क्लियर मन बुद्धि होगी तो बाप का इशारा, बाप का डायरेक्शन, बाप की श्रीमत तो मिल ही जाएगी और वो कैच कर सकेंगे। मन बुद्धि क्लियर नहीं होगी तो कैचिंग पावर काम नहीं करेगी। तो देखो क्लीन बुद्धि रखना, टच होगा ये करना है और ये नहीं करना है। इसलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, वर्तमान समय साइलेंस की शक्ति अपने पास जितनी हो सके जमा करो, जब चाहो जैसे चाहो वैसे मन बुद्धि का कंट्रोल कर सको। व्यर्थ संकल्प स्वप्न में भी टच न हो, ऐसा माइंड कंट्रोल चाहिए। इसलिए कहावत है मन जीते जगत जी, जैसे स्थूल कर्मेंद्रियां हाथ हैं, पांव हैं, जहां चाहो जब तक चाहो तब तक आयरन से चला सकते हो, ऐसे ही मन और बुद्धि की कंट्रोलिंग पावर आत्मा में हर समय काम करे, इमर्ज रहे। ऐसे नहीं योग के समय अनुभव होता है लेकिन कर्म के समय, व्यवहार के समय, संबंध संपर्क में आने के समय अनुभव कम हो जावे। अचानक पेपर आने हैं क्योंकि फाइनल रिजल्ट के पहले भी बीच बीच में पेपर लिए जाते हैं, तो इस बर्थडे पर विशेषता क्या करेंगे? साइलेंस की शक्ति जितना जमा कर सको, एक सेकंड में स्वीट साइलेंस की अनुभूति में खो जाओ, क्योंकि साइंस और साइलेंस, साइंस भी अति में जा रही है। तो साइंस पर साइलेंस की शक्ति की विजय परिवर्तन करेगी। साइलेंस की शक्ति से दूर बैठे किस आत्मा को सहयोग भी दे सकते हो, सकार दे सकते हो। कोई का भी भटका हुआ मन शांत कर सकते हो। ब्रह्मा बाबा को देखा, जब भी कोई अनन्य बच्चा थोड़ा हलचल में व शारीरिक हिसाब किताब में रहा तो सवेरे उठ करके बच्चे को साइलेंस की शक्ति से सकास दिया और अनुभव कराते थे। पांच तीन 2008 की अव्यक्तवाणी का तीसरा पेज। तो अंत में साइलेंस की सेवा का सहयोग देना पड़ेगा। सर्कमस्टांस संसार ये बहुत ध्यान में रखो, साइलेंस की शक्ति या अपने श्रेष्ठ कर्मों की शक्ति जमा करने की बैंक सिर्फ अभी ही खुलती है और कोई भी जन्म में जमा करने की बैंक नहीं है। अभी अगर जमा नहीं किया तो फिर बैंक ही नहीं होगी तो किस में जमा करेंगे। इसलिए जमा की शक्ति को जितना इकट्ठा करना चाहो उतना कर सकते हो। वैसे लोग भी कहते हैं जो करना है वो अब कर लो, जो सोचना है वो अब सोच लो। अभी जो भी सोचेंगे वो सोच सोच रहेगा और कुछ समय के बाद जब समय की सीमा नजदीक आ जाएगी तो सोच पश्चाताप के रूप में बदल जाएगा। हम यह करते तो अच्छा होता, यह करना था। सोच नहीं रहे पश्चाताप में बदल जाएगा। इसलिए बाप दादा पहले से ही इशारा दे रहे हैं, साइलेंस की शक्ति एक सेकंड में कुछ भी हो जाए साइलेंस में खो जाओ। ऐसे नहीं कि हम तो पुरुषार्थ कर रहे हैं। अभी जमा का पुरुषार्थ कर जमा कर सकते हो। तो बाप दादा का बच्चों से स्नेह है, बाप दादा एक एक बच्चे को साथ ले जाना चाहते हैं। जो वायदा है साथ रहेंगे साथ चलेंगे, वो वायदा निभाने के लिए साथ चलेगा। जो समान होगा वो ही साथ चलेगा। सुनाया था ना, डबल फॉरनर्स को हाथ में हाथ देके चलना अच्छा लगता है। तो श्रीमत का हाथ में हाथ हो, बाप की श्रीमत वो आपकी मत, इसको कहते हैं हाथ में हाथ। तो ठीक है, आज बर्थडे उत्सव मनाने आए हो ना, बाप दादा को खुशी भी है कि मेरे बच्चे, फकुर है बाप को कि मेरे बच्चे सदा उत्साह में रहते हैं, उत्सव मनाते रहते हैं। हर रोज उत्सव मनाते हो या विशेष दिन पर मनाते हो, सारा संगम युग उत्सव ही उत्सव है। ये सारा युग ही उत्सव का है और कोई युग संगम युग जैसा नहीं है। तो सबको उमंग उत्साह है कि हमें समान बनना ही है। देखेंगे बनेंगे करेंगे, हर बात में गेंगे नहीं। जो समझते हैं बन नहीं है वो हाथ उठाओ। बन नहीं है क्या करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। तैयार तो है कुछ भी त्याग करना पड़े, परंतु सबसे बड़ा त्याग क्या है? त्याग करने में सबसे बड़े से बड़ा एक शब्द विघ्न डालता है, त्याग। तपस्या वैराग, बेहद का वैराग, और इसमें एक ही शब्द विघ्न डालता है। जानते तो हो कौन सा एक शब्द है? उस शब्द है मैं अर्थात बॉडी कॉन्शियसनेस। इसलिए बाप दादा ने कहा जैसे अभी जब भी मेरा कहते हो तो पहले क्या याद आता है, मेरा बाबा आता, मेरा बाबा आता है ना, भले मेरा और कुछ भी करो लेकिन मेरा कहने से आदत पड़ गई है, पहले बाबा आता है। ऐसे ही जब मैं कहते हैं जैसे मेरा बाबा भूलता नहीं है, कभी किसको मेरा कहो तो बाबा शब्द आता ही है। ऐसे ही जब मैं कहो तो पहले आत्मा याद आवे, मैं कौन, ज्योति बिंदु आत्मा, मैं आत्मा ये कर रही हूं, तो मैं और मेरा हद का बदल बेहद का हो जाएगा। हो सकता है कान तो हिलाओ, ये आदत डालो, मैं और फौरन आवे आत्मा, और जब मैं पनाता है तो एक शब्द याद आवे, करण करावनहार कौन है, बाप करावनहार है, कराए रहा है। करावनहार शब्द करने के समय सदा याद रहे, मैं पन नहीं आएगा, मेरा विचार, मेरी ड्यूटी। तो ड्यूटी का भी बहुत नशा होता है ना, मेरी ड्यूटी, लेकिन देने वाला दाता कौन है, ये ड्यूटीज भी प्रभु की देन है, प्रभु की देन को मैं मानना, तो भला सोचो ये अच्छी बात है क्या। तो बाप दादा भी लास्ट दो टर्न है, एक मास सीजन समझो, इस वर्ष की सीजन समाप्त होने में, तो समाप्ति में बाप दादा क्या समाप्ति कराना चाहता है, एवर रेडी है कि सोचना पड़ेगा, चाहे यहाँ आवे या नहीं आवे, लेकिन हरेक स्थान से बाप दादा रिजल्ट चाहते हैं। एक मास ऐसा नेचुरल नेचर बनाओ, क्योंकि नेचुरल नेचर जल्दी में बदलती नहीं है, तो नेचुरल नेचर बनाओ जो बताया सदा आपके चेहरे से बाप के गुण दिखाई दे, चरण से बाप की श्रीमत दिखाई दे, और सदा मुस्कराता हुआ चेहरा हो, सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने की चाल हो, हर कर्म में कर्म और योग का बैलेंस हो। कई बच्चे बाप दादा को बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते रहते हैं, बताएं क्या कहते हैं, कहते हैं बाबा आप समझ लो ना मेरी ये नेचर है, और तो कुछ नहीं है, मेरी नेचर ही ऐसी है। अभी बाप दादा क्या कहे, मेरी नेचर है, मेरा बोल ऐसा है, कई ऐसे कहते हैं, क्रोध हमने थोड़े ही किया, मेरा बोल ही थोड़ा बड़ा है, थोड़ा तेज बोल लेता हूँ, बाकी अंदर से तो कुछ भी नहीं है, मैं कोई क्रोध थोड़े ही किया है, सिर्फ तेज बोल दिया, देखो कितनी मीठी मीठी बातें करते हैं। और बाप दादा कहते हैं जिसको आप मेरी नेचर कहते हो ये मेरा कहना ही रंग है, मेरी नेचर की ये रावण की नेचर समझो, ये आपकी नेचर नहीं रावण की नेचर है। 5 मार्च 2008 की वाणी का चौथा पेज, आपकी नेचर अनादिकाल, आदिकाल, पूज्यकाल, यह ओरिजिनल नेचर है। रावण की चीज को मेरा मेरा कहते हो इसलिए आ जाती नहीं है। पराई चीज को अपना बना लिया है, कोई पराई चीज को अपने पास संभाल कर रखे, छिपा कर रखे, अच्छा माना जाता है क्या? तो रावण की नेचर, पराई नेचर, उसको मेरा क्यों कहते हो? बड़े फकूर से कहते हैं मेरा दोष नहीं है, ये मेरी नेचर है। बाप दादा को भी रिझाने की कोशिश करते हैं। अब ये समाप्ति समारोह करेंगे, बोलो करेंगे? देखो दिल से कहो, मन से कहो, जहां मन होगा वहां सब कुछ हो जाएगा। मन से मानो कि ये मेरी नेचर नहीं है, ये दूसरे की चीज है, वो अपने पास नहीं रखनी है। बाप तो मर्जी व मर्जन बन गए ना, आप भी बन जाओ। आपकी ब्राह्मण नेचर है या पुरानी नेचर है? तो बाप दादा क्या चाहते हैं? बल मनोरंजन बनाओ, डांस करो, खेल करो, लेकिन सब कुछ करते समय बाप समान बनना ही है। समान बनने के बिना साथ चलेंगे क्या? कस्टम में धर्मराजपुरी में ठहरना पड़ेगा तो साथ नहीं चलेंगे। सोचो, बताओ दादियां, बताओ एक मास रिजल्ट देखें क्या? देखें, एक मास अटेंशन रखेंगे। एक मास अगर अटेंशन रखा तो भी नेचुरल हो जाएगा। मास का एक दिन भी छोड़ना नहीं। अच्छा, जिम्मेवारी उठाती हैं दादियां, सभी इकट्ठे होकर के एक दो के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना का हाथ फैलाओ। जैसे कोई गिरता है तो उनको हाथ दे करके प्यार से उठाते हैं, तो शुभ भावना और शुभ कामना का हाथ एक दो को सहयोग दे करके आगे बढ़ाते चलो। आप सिर्फ चेक इनकम करते हो, करके फिर चेक करते हो, पहले सोचो पीछे करो, पहले करो पीछे सोचो नहीं। ये डबल विदेशी क्या समझते हैं? करेंगे डबल विदेशी करेंगे, बहुत अच्छा है। अगर डबल विदेशी एग्जाम्पल बन जाए तो बाप दादा बहुत बहुत दुआओं की बरसात करेगा। क्या सोचा डबल विदेशियों ने? एग्जाम्पल बनेंगे। अगर एग्जाम्पल बनेंगे तो दोनों हाथ उठाओ, कमाल है। बाप दादा डबल विदेशियों को अभी से हिम्मत और उमंग उत्साह की दुआएं दे रहे हैं। ये भारत वाले भी कम नहीं है, वो भी अंदर अंदर सोच रहे हैं। वो सोचते हैं कि हम करके ही दिखावेंगे। तो देखो भारत ने क्या नहीं किया। भारत वाले बाप को ऊपर से नीचे ले आए, ये कमाल तो की है ना भारतवासियों ने। तो उनके आगे और बातें क्या बड़ी बातें हैं? अच्छा, जो समझते हैं कि बाप से और दादी से भी बहुत बहुत प्यार है वो हाथ उठाओ। अच्छा, कितना प्यार है? अभी आपका दिल कौन सा गीत गाता है? गीत गाता है ना, इतना प्यार करेगा कौन? जितना बच्चे बाप को करते, बाप करता बच्चों को, इतना प्यार कोई करेगा? तो प्यार के पीछे क्या छोड़ना, थोड़ी छोड़ कुछ छोड़ना थोड़े ही लगता है। ये छोड़ना नहीं है, ये तो पाना है। छोड़ना नहीं कहेंगे। बाप दादा शिव मंत्र चला के सभी को संपन्न रूप में देखते हैं। आपके पास भी शिव मंत्र है ना? शिव मंत्र है, छू मंत्र नहीं है। तो शिव मंत्र चलाओ, अगली बार सोच समझ करके अपना प्लान बनाओ, आप ही बनाओ। बना करके देते हैं तो बहाने बहुत करते हैं, हमसे ये हो गया ये हो गया, तो अपना प्लान अपने आप ही बनाओ। आज बाप का जन्मदिन मनाए रहे हो, तो जन्मदिन पर क्या करते हैं? कोई ना कोई गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट देते हैं ना, तो बाप को क्या गिफ्ट देंगे? जो बाप ने कहा वो करके दिखाना, यही गिफ्ट देना। और बाप दादा भी आप सबको गिफ्ट दे रहा है, आपका भी तो जन्मदिन है ना, तो क्या गिफ्ट दे रहे हैं? जो गिफ्ट लेना चाहो वो ले सकते हैं, विशेष वरदान है। लेकिन वरदान काम में तब आएगा जब रोज अमृत वेले इस वरदान को रिवाइज करेंगे, गिफ्ट को रिवाइज करेंगे। तो बाप दादा यही गिफ्ट दे रहे हैं, एक कदम हिम्मत का कभी नहीं छोड़ना। तो बाप दादा हजार कदम मदद देगा, ऐसे नहीं देखना, देखे बाबा मदद करता है या नहीं, बाबा का इम्तिहान नहीं लेना। बाप तो बांधा हुआ है, आप भी बंधे हुए हो, बाप भी बांधा हुआ है। इस गिफ्ट को रोज बार बार देखना। कोई बढ़िया गिफ्ट होती है तो उसको बार बार देखते हैं, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है, तो रोज अमृत वेले देखना। और कर्म करते कर्मयोगी जीवन में भी बीच बीच में रिवाइज करना। अच्छा, गिफ्ट ली और गिफ्ट दी, ये अच्छी बात।